लुका अध्याय 19। यीशु यरीहो नामक जगह से जा रहे थे। उसी वक्त जकाई नाम के टैक्स कलेक्टरों के अमीर प्रधान के मन में उन्हें देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। हालांकि उसने चाहा कि यीशु को देख ले, लेकिन भीड़ के कारण और नाटा होने की वजह से वह मुश्किल पा रहा था। उसी रास्ते पर दौड़ते हुए वह एक गुलर के पेड़ पर जा बैठा। यीशु वहां आ पहुंचे और उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखा और कहा,
जक्कई, जल्दी से नीचे आओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारे यहां आकर खाना खाऊंगा।
वह झटपट नीचे उतर आया और बड़ी खुशी से वह यीशु को अपने घर ले गया और उनका स्वागत किया। यह सब देखकर लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे,
अरे, यीशु तो दुष्ट इंसान के यहां जा रहे हैं।
खड़े होकर जकाई यीशु से कहने लगा,
देखिए यीशु, मैं अपनी दौलत का आधा हिस्सा गरीबों को दे दूंगा। अगर मैंने धोखाधड़ी से किसी को लूटा है तो उसका चौगुना भर दूंगा।
यीशु ने कहा,
आज इस घर में पापों की माफी आई है, क्योंकि जकाई भी अब्राहम के वंश का है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को खोजने और बचाने आया है,
इसलिए कि वे लोग परमेश्वर के राज्य के बहुत जल्दी आने के बारे में कायल थे। यरूशलेम के पास आते ही, जबकि उनके कान इन सब बातों को सुनने के लिए खुले थे, यीशु ने यह दृष्टांत बतलाया।
एक अमीर आदमी ने बहुत दूर देश को जाकर अपने लिए राज्य जीतकर वापस आने की योजना बनाई। इसके पहले उसने अपने 10 सेवकों को बुलाकर 10 मोहरें दी और कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं, इसे कारोबार में लगा दो। लेकिन उसी के लोगों ने उससे नफरत के कारण अपने संदेश वाहकों के हाथ ये कहलाकर भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हमारे ऊपर राज्य करे। राजपद पाकर जब वो लौटा तो उसने अपने नौकरों को, जिन्हें पैसे दिए थे, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि लेन देन करके उन्होंने क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे मालिक, आपके पैसों से मैंने उतना ही और कमा लिया है। उसने उससे कहा, शाबाश, तुम थोड़े से पैसे में ईमानदार रहे, अब से तुम 10 नगरों पर अधिकार ले लो। दूसरे ने भी वहां आकर कहा, मालिक, देखिए ये रहा वो पैसा जो आपने मुझे दिया था, मैंने उतने ही और कमा लिए हैं। उसको भी मालिक ने 5 नगरों की जिम्मेदारी दे दी। तीसरा भी वहां आकर मालिक से कहने लगा, ये रहा वो पैसा जो आपने मुझे दिया था, मैंने इसे अच्छी तरह कपड़े में लपेट कर रख दिया था, इसलिए कि आप कठोर स्वभाव के हैं, मुझे आपसे डर लगता है। आप तो जहां रखते नहीं वहीं ढूंढते हैं, और जहां बोते नहीं वहीं काटते हैं। तब उस अमीर आदमी ने कहा, हे दुष्ट इंसान, तुम्हारे मुंह के कहने के मुताबिक मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगा। मैं जहां रखता नहीं हूं वहीं से अपेक्षा करूंगा, और जहां बोता नहीं हूं वहीं काटूंगा। तुमने मेरी दी हुई रकम को बैंक में क्यों नहीं रख दिया था, ताकि ब्याज के साथ मुझे मेरा पैसा मिलता। वहां पर खड़े हुए लोगों से मालिक ने कहा, इस आदमी से पैसा लेकर उसको दे दो जिसने सबसे ज्यादा कमाया है। लोगों ने कहा, मालिक, उसके पास तो पहले ही से 10 मोहरे हैं। मालिक ने फिर कहा, जिसके पास पहले से है उसे और मिलेगा, जिसके पास कम है उससे वो भी ले लिया जाएगा। मेरे उन दुश्मनों को मेरे पास यहां ले आओ जो नहीं चाहते कि मैं उन पर शासन करूं, मेरे सामने ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा।
यह सब कहकर यीशु आगे यरूशलेम को बढ़ गए। जब वे बैतफगे और बैतनिया में जैतून के पहाड़ पर पहुंचे, यीशु ने 2 शिष्यों को ये कहकर भेजा कि
सामने के गांव में तुम जैसे ही दाखिल होगे, तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई नहीं बैठा, उसे खोलकर यहां ले आओ। अगर कोई पूछे कि क्यों ऐसा कर रहे हो, तो कहना कि यीशु को इसकी जरूरत है।
भेजे हुए लोगों ने जाकर वैसा ही पाया जैसा उन्हें बताया गया था। जब वे उसे खोल रहे थे, मालिक ने उनसे पूछा,
ये क्या कर रहे हो?
तभी उन्होंने कहा,
यीशु को इसकी जरूरत है।
वह गधी यीशु के पास ले आए और उस पर अपने कपड़े डालकर यीशु को उस पर बिठाया। चलते वक्त वे अपने कपड़े भी सड़क पर डालते गए। जब यीशु जैतून के पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, शिष्यों की भीड़ ऊंची आवाज से खुशी से भरकर परमेश्वर के किए गए बड़े कामों के लिए बड़ाई कर रही थी। वे चिल्ला रहे थे,
जो राजा प्रभु के नाम से आ रहा है वह महान है, आसमान में शांति और ऊंचाई पर उनकी महिमा हो।
उस भीड़ में से कुछ फरीसियों ने कहा,
गुरु जी अपने शिष्यों को डांटिए, वे शोर मचा रहे हैं।
जवाब में यीशु ने कहा,
मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि अगर ये लोग मेरी बड़ाई नहीं करेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे।
शहर के पास आते ही यीशु रोने लगे और बोले,
अच्छा होता अगर तुमने आज सुकून देने वाली बातों को जाना होता, लेकिन वे बातें तुम्हारी नजर से छिपी हुई हैं। एक दिन आएगा जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे चारों तरफ बाड़ा बांधेंगे, वे तुम्हें तहस नहस कर डालेंगे, वे एक पत्थर को भी यहां नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने दिए गए मौके की कीमत नहीं जानी।
इसके बाद प्रार्थना भवन के अहाते में जाकर यीशु बेचने वालों को खदेड़ने लगे और कहा,
ये लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना डाला है।
यीशु हर दिन प्रार्थना भवन में सिखाते रहे, लेकिन प्रधान पुरोहित शिक्षक और अगुओं ने उन्हें नाश करने की योजना बनाई। वह कुछ नहीं कर पाए क्योंकि सभी लोग बड़े ध्यान से यीशु की बातों को सुन रहे थे।